वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ?
वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, यहाँ तक आ गया है।
कौन?
कामरान। मेरा पीछा कर रहा है, सेनिटोरियम के गेट पर मिला था, हमारी आपस में कई बातें हुई और फिर झगड़ा हो गया। मुझे डर है कहीं वो कोई बेवकूफी ना कर बैठे, इस बार उसने मुझे काफी संजीदगी से धमकी दी है। इस बार जिस तरह उसने मुझे कत्ल की धमकी दी, मैं तो वाकई डर गई थी, लेकिन मैंने उस पर जाहिर नहीं किया। अब वो दोबारा मेरे पीछे पड़ गया है।
पागल हो गया है, अहमा। अभी सीधा करता हूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, 110। देखिए जनाब, एक लड़का बार बार मेरी कुलीग को तंग कर रहा है। जी, मैं करामति बात कर रहा हूं। जी, मैदान अर्जा 3, खयाबान एलवंद, ब्लॉक 17। जी 17। प्लीज मुमकिन हो तो जरा जल्दी कीजिएगा। खुदा हाफिज़।
लेकिन आपने ये ठीक नहीं किया है, मुझे डर है कि आपके लिए वो मुश्किल ना खड़ी करते।
नहीं, बहुत अच्छा किया हमने। इस बेवकूफ लड़के को इंसान बनाना पड़ेगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सीधा शुमाल जाकर अपने मछलियों के फार्म संभालेगा।
ये अदालत का नोटिस कौन दे गया है?
गरीब आबादी का एक रिहायशी था, उसके हाथों पर कालक और ग्रीस लगी हुई थी। कोई मुलाजिम था या मैकेनिक?
दरमियाने कद का था, नीम खाकस्तरी बाल वाला।
जी हाँ, मेरे ख्याल से।
उसका नाम बहरोज था?
जी हाँ, मेरा ख्याल है यही नाम था।
कोई कॉन्टेक्ट नंबर दिया?
जी, अपना एड्रेस और फोन नंबर दिया था, कह रहा था कि जरूर उससे राब्ता कर लें। वो खासा बदतमीज आदमी था। मैंने कहा कि आपके पास फजूल कामों का वक्त नहीं है।
ठीक है, फौरन उसके नंबर पर फोन करो और आज का टाइम दे दो।
बेहतर है, मैं जाऊं?
हाँ, जा सकती हो।
जी
हेलो, आप कैसी हैं मिसेस तैमान? मैं जावेद बात कर रहा हूँ।
जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
आप मेरी तबीयत का छोड़िए, तैमान साहब की खैरियत के बारे में बताइए।
वैसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, बेहिसो बेजान।
खुदा शिफा दे इंशाल्लाह। मुझे आपसे शिकायत है। क्या मैंने आपसे दरख्वास्त नहीं की थी कि पैमान साहब से मरबूत मुतालिक तमाम नक्शे और दीगर कागजात वो मुझे भेज दीजिए? अब वो नक्शे चंद ब्लैक मिलर्स ओबाश कस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गए हैं। अब हमारे पास जो भी दौलत जायदाद है वो सब उन्हें देना होगी, क्योंकि पैमान बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा है और आप तो गफलत बरत रही हैं। आपने धोखा खा लिया है मैडम, जिसकी वजह से हम मुश्किल में फंस चुके हैं।
मुश्किल? कैसे मुश्किल?
अब आपको बेचारे पैमान के बारे में दुआ करने की जरूरत नहीं। क्या इसलिए दुआ करेंगी ताकि वो ठीक हो जाए और जेल चला जाए?
ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं?
बस कीजिए मैडम, बजाय अनजान बनने के बेहतर होगा कि मुस्तकबिल की फिक्र करें, कोशिश करें उन लोगों से नक्शे वापस ले लें। वरना आपके पास जो भी दौलत और जायदाद होगी वो अदालत जब्त कर लेगी, फिर चाहे पैमान जिंदा रहे या ना रहे, बल्दिया से उसे बेदखल कर दिया जाएगा। आपने ये सोचा कि फिर आप कैसे जिंदगी गुजारेंगी? उन नक्शों को वापस ले लें। मैंने जो कहा उसे याद रखिएगा। फिलहाल खुदा हाफिज।
हेलो,
बैठो। हाँ तो बताओ, कितना लिखूं?
क्या
उन जाली नक्शों की शिकायत वापस लेने के लिए कितनी रकम लिखूं? 50 लाख काफी होंगे?
नहीं, मुझे अपना हक चाहिए।
हमारा हक कितना है? 70 लाख किसी मामले को रफा दफा करने के लिए बहुत होते।
नहीं, मैंने 5,000 मीटर जमीन तुम्हारे हाथ बेची थी और तुमने 500 मीटर जमीन की कीमत अदा की है, और अब पता चला है कि जमीन इस्लाहत एराजी में आती है।
ये खराफात किसने तुम्हारे जहन में डाली है? उल्लू बना रहा है। तुमने खुद 5,000 मीटर जमीन के कागजात पर साइन किए हैं
तुम्हारे हाथ की लिखी हुई सनद मेरे पास मौजूद है।
मेरे पास सनद मौजूद है कि मैंने तुमसे 5,000 meters जमीन खरीदी है।
झूठ बोल रहे हो।
तुम्हारे दस्तखत मेरे पास हैं।
तुम और खुदा से गाफिल, वो इंजीनियर जो बिस्तर मर्ग पर पड़ा है, तुम दोनों ने मुझे कागजात दिखाए थे कि इस जमीन का बेशतर हिस्सा बल्कि 3 अतराफ से यह जमीन इस्लाहत एराजी की जेल में आती है, और मैंने उन कागजात पर साइन कर दिए। तुमने मुझे नहीं बताया कि जमीन के बीच से शाहराह गुजरनी है।
मैं ये 2 करोड़ का चेक तुम्हें लिखे देता हूँ, इसे काफी समझो, वरना अगले 2 सालों तक अदालत में तुम्हारी पेशी की नौबत ही नहीं आएगी, और मैं इस ब्रिज को बेचकर मुल्क से बाहर जा चुका होऊंगा। जाओ उस करामत जी से कह देना कि इस मामले में टांग ना अड़ाए, अपने काम से काम रखे। लालची भिखारी,
कल रात के फोन के बाद मैं आपके लिए परेशान हो गई थी। वाकई मुश्किल है, उम्मीद करती हूँ वो लोग जल्द से जल्द आपको दोबारा मिल जाएं।
मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुल्क से बाहर जाने का इरादा छोड़ देंगी।
यानी मैं अगर चली जाऊं तो आपको बुरा लगेगा?
मैं, मेरा तो पता नहीं, अलबत्ता आपके वालिद को जरूर बुरा लगेगा, मुझे यकीन है, क्योंकि अब मैं आपके वालिद के एहसासात को बखूबी समझ सकता हूं, क्योंकि अपनी बहुत ही अजीज हस्ती की दूरी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है।
लेकिन जब वो लोग यहां थे तब भी तो आपका उनसे कोई रابطہ नहीं था।
अब जबकि मैं उन्हें खो चुका तो उनकी कदर समझ में आई। जब वो दूर चले गए तो पता चला कि वो दिल के कितने करीब थे। अलगर्स के हम इंसान हकीकतन नाकदर होते हैं। जब तक कोई चीज हमारे पास होती है हमें इसकी कदर नहीं होती, लेकिन जो नहीं हम उसका अफसोस करते हैं, इस कदर अफसोस करते हैं, इस कदर अफसोस करते हैं कि मायूसी तारी हो जाती है।
लेकिन मेरे पास एक खुशखबरी है। आज जब मैंने मिसेस सलीम ज़ादा से बात की तो उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया। एक मुद्दत के बाद आपको यकीन आएगा, उन्होंने कहा नहीं।
ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे शख्स के लिए जिसने सालों किसी से कोई बात ना की हो, वो अगर नहीं भी कहे तो उसके लिए बड़ी कामयाबी है। ये लड़का तो अभी तक है।
कौन, कामरान?
हाँ, खैर कोई मसला नहीं, पहले हुशन को एक फोन कर लो। बेचारा मरियम का भाई हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है।
वो लोग बस आपको तंग करना चाहते हैं ताकि आप इनका पीछा छोड़ दें, वरना एक गुर्दे के लिए कौन इतने पैसे देता है। बेचारी मरियम, लगता है इनकी तकदीर में सुख का सांस नहीं लिखा।
कुजवैनी साहब, आपके 3 माह की अदायगी रहती है, 8 लाख के हिसाब से 3 माह के कुल 24 लाख बनते हैं, हिसाब बिल्कुल साफ है। अब आप ये 24 लाख रुपए अदा करेंगे या हम कोई और तरीका अख्तियार करें, बोले क्या कह रहे हैं आप?
मैं इंतजाम करता हूँ।
ठीक है, तो फिर आप अपना पैन दीजिए तो मैं जरा लिख लूँ ताकि सनद रहे और कोई कानूनी मसला पैदा ना हो। 24 लाख 2 दिन के अंदर अदायगी।
2 दिन के अंदर?
तो फिर कब?
मगर मैं इतनी जल्दी नहीं दे सकता।
मुझे परसों तक चाहिए। हमने यहाँ कोई नादारों मोहताजों की इमदाद के लिए खैराती इदारा या कर्ज हंसने का दफ्तर तो नहीं खोला हुआ ना, लिहाजा परसों तक 24 लाख मुझे मिल जाने चाहिए, वरना कोई और रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर हो जाऊंगा। लिहाजा कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करोगे तो कुछ होगा ना। ये पेन पकड़ो। हेलो, हेलो, कौन?
तुम अपने दिमाग से लालच का खन्नास निकाल दो। मैं उस गुर्दे के तुम्हें सिर्फ 70 लाख दे सकता हूँ, समझ गए ना, इससे ज्यादा नहीं। कल रात मैंने एक दोस्त से बात की थी, उसने मुझे बताया कि अगर पेशेंट की ICU में सही तौर पे निगहदाश्त की जाए तो उसके होश में आ जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तुम्हें ज्यादा लालच दिखाने की जरूरत नहीं। बहुत से पेशेंट्स हैं जो सालों कोमा में रहने के बाद भी होश में आ गए हैं, जिसकी मिसाल खुद मैं और मिसेस शफी हैं, जो कोमा में थे और फिर होश में आ गए।
तुम्हारी माँ की हालत हम दोनों से ज्यादा बुरी तो नहीं है ना?
यकीन जानो, तुम्हारी माँ को होश आ गया और अगर मैंने उन्हें ये सब कुछ बता दिया तो तुम लोग सड़क पर आ जाओगे। खुदा हाफिज।
अब आप लोग यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए जाइए, आज के लिए इतना ही काफी है, मैं बाद में खुद ही रابطہ कर लूंगा। कुजवेनी साहब जाइए, मैंने कहा आप भी जाइए। चले जाइए। शिवा, शिवा कहाँ हो? शिवा,
आपने वाकई डॉक्टर से पूछा था क्या?
नहीं, मजबूरन चाल चली है, कोई और रास्ता नहीं। अगर उसकी शरायत को कबूल कर भी लिया जाए तो क्या मालूम कि वो कल कोई और शर्त नहीं रखेंगे।
चाल है या झूठ है?
अब आप इसे जो चाहें कह सकती हैं। कभी कभी मजबूर हो जाता हूँ झूठ बोलने पर। जैसे ही झूठ बोलता हूँ या किसी गुनाह का मुर्तकिब होता हूँ, कोई ना कोई मुसीबत नाजिल हो जाती है मुझ पर। पुलिस आ गई है, नीचे चलते हैं।
कामरान शफी, आप हैं?
जी।
आप सुबह से इन मोहतरमा का पीछा क्यों कर रहे हैं?
इसलिए कि ये मेरी मंगेतर है।
आपकी मंगेतर? क्या आप इनकी मंगेतर हैं?
नहीं जनाब आली, झूठ बोल रहे हैं।
मैं ये साबित कर सकता हूँ, लेकिन पहले आप इन साहब से पूछिए कि इनका मेरी मंगेतर से क्या ताल्लुक है।
करामती साहब मेरे कुलीग भी हैं और इनसे हमारे खानदानी टर्म्स भी हैं।
आप ही ने आज हमें कॉल की थी?
जी जनाब, मैंने ही आपको कॉल की थी, लेकिन मेरा इस मामले से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है।
मोहतरमा, बेहतर है कि अपनी फैमिली को फोन करें कि पुलिस स्टेशन पहुंचे। जी जल्दी करें।
जी बेहतर है।
जी कैसी हो बहनोश? मेरी जान कहाँ हो तुम? थाने में हो? किस थाने में? आखिर थाने में क्यों? अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारे बाबा को फोन करती हूँ, हम दोनों वहाँ आते हैं। हाँ तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है ठीक है मेरी जान, खुदा हाफिज।
मैं जब गाड़ी से उतरी तो मैंने इनसे कहा कि मैं इनसे शादी नहीं करना चाहती और जिससे मेरा दिल चाहेगा मैं शादी करूंगी, लेकिन ये साहब फिर भी इसरार करते रहे और फिर ये धमकी दी कि मार डालेंगे मुझे।
माफ कीजिएगा जनाब, पहले बता चुकी हैं कि इनसे शादी करने के लिए राजी नहीं, जिसकी वजह से ये पहले भी खुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी हैं।
जी मैंने नोट कर लिया है। शफी साहब, क्या आप अपनी बेटी के करामती साहब के साथ ताल्लुकात से बाखबर हैं?
जी, ये दोनों एक कार्य खैर के तहत कुछ मरीजों की मदद की गर्ज से एक दूसरे से मिलते हैं।
शफी साहब, आप कामरान शफी से जो रिश्ता है उसके पेशे नजर क्या आप चाहते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए?
जी, बशर्ते कि मेरी बेटी का पीछा और उसे धमकी देना छोड़ दे। मेरी जान, तुम अपनी जिंदगी और अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो, और ना अपने लिए मुश्किल खड़ी करो ना हमारे लिए।
मंसूरी, ये सब यहां से जा सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए फिलहाल यहां रुकना पड़ेगा। रात तक उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।
अब मुझे समझ आ गया कि ये सारा ड्रामा इस पैसे वाले शख्स की वजह से किया गया। चाचा जान, ये सही नहीं किया आपने।
ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत समझ रहे हो बच्चे। सरोज साहब, मैं जानता हूं आपके बहनोश से किस किस्म के रवाबित हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ।
जी फरमाइए।
मैं चाहता हूँ बहनोश से हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर दें। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे भाई ने मुझसे कतई ताल्लुक कर लिया है और अब हमारे ताल्लुकात और कशीदा हो जाएंगे।
आप खातिर जमा रखें, मैं अपनी बीवी की जुदाई के बाद जो हमेशा के लिए ईरान से बाहर चली गई हैं, ये बात मुझे कल रात ही पता चली है। मैं आपकी तमाम बातें समझ भी रहा हूं। मैं भी शायद किसी ना किसी तरह आप ही के तजुर्बे को दोहरा रहा हूं। यही वजह है कि मैं नहीं चाहता कि आप गलतफहमी का शिकार रहें।
सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बच्चे हैं आपके?
एक बेटा है जो इस वक्त 3 साल का है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं और आपकी बेटी अरवाओं से किए गए वादों को पूरा करते ही हमेशा के लिए एक दूसरे से कतई ताल्लुक कर लेंगे।
आपका बहुत शुक्रिया, मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है।
चले आइए।
आखिर तुम खुद को समझते क्या?
और तुम खुद को क्या समझते हो?
तुम ये 3 बच्चों का सरपरस्त हो गए हो क्या?
हाँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने तुम्हारे जहन में क्या भर दिया है। बंदे खुदा, तुम महज 2 करोड़ रुपयों के खातिर तकरीबन 4 अरब रुपयों से दस्तबरदार हो रहे हो, जो कि 2 यतीम बच्चों का हक है। तुमने खुद 4 साल पहले 500 मुरब्बा मीटर जमीन 10 करोड़ में बेची थी।
हाँ बेची थी, इससे मुझे कभी इनकार है, लेकिन उनके हाथ काफी लंबे हैं, वो बड़े आदमी हैं। हम और आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, और वैसे भी कागजात में लिखा है कि मैंने 5,000 मीटर जमीन उन्हें बेची है।
हाँ, तुम बात समझ क्यों नहीं रहे? ये सारे असली कागजात और दीगर कई ठोस सबूत और दलाइल हमारे पास मौजूद हैं कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया है।
मेरा मकसद पैमान साहब की तरफ से आपसे माफी तलब करना है। माफ कर देंगे, ठीक है, 2 करोड़ ले लें, और जब वो यतीम बच्चे 18 साल के हो जाएं और जब आपसे अपने हक का सवाल करें तो फिर मुकर जाइएगा।
बहुत चालाक हैं आप। अगर आपका मकसद इंजीनियर साहब को बख्शवाने का है तो फिर 500 मुरब्बा मीटर जमीन की कीमत आज की कीमत के हिसाब से मुझे अदा की जाए। वैसे भी जनाब, जिंदा आदमी को किसी वकालत की जरूरत नहीं होती।
लालच ने तुम्हारी आंखें अंधी कर दी। तुम्हारा अंजाम भी इंजीनियर पैमान की तरह होगा, हॉस्पिटल के बेड पर दम निकलेगा।
तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हें उससे कोई मतलब औरत नहीं होना चाहिए, अपने काम से काम रखो, अपना काम करो, तुम उसकी तरफ ना देखो।
लगता है मामला काफी गर्म होता जा रहा है।
नहीं, मुझे नहीं लगता। करामती साहब तो आजकल नरम मिजाज हो गए हैं, वो अब पहले जैसे नहीं रहे।
हाँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने तुम्हारे जहन में क्या भर दिया है।
मसूद हूँ मैं।
हाँ मसूद साहब, कैसे हैं?
अब तक रूपोश हो या बाहर आ गए?
हाँ, खतरा टल गया, पुलिस को किसी और की तलाश थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया।
उस रोज मैंने तुम्हें ब्रिज सदफ के बारे में बताया था, याद है ना?
हाँ, फिर
वो बंदा यहाँ सरोज से दफ्तर में झगड़ रहा है, कोई कागजात मांग रहा है। तब मुझे पता चला कि उस बदबख्त को 3-4 अरब का धोखा दिया गया है। इस वक्त वो तमाम कागजात सरोज के पास है। अब बताओ क्या करना है?
3-4 अरब? सरोज वो कागजात उसे दे तो नहीं देगा?
नहीं भाई, कौन देता है? अब जब केस के पास कार्य खैर अंजाम देने और अरवाहों को बख्शवाने का बहाना हाथ आ गया है,
अब या तो मुफ्त में उससे हथियाना चाहता है या शायद उसके साथ शरीक होना चाहता
अच्छा।
है।
अच्छा, ये बताओ ये कागजात उससे हम किस तरह हासिल कर सकते हैं?
तुम तो ज्यादा बेहतर जानते हो। काम 20
दवाओं का शॉपर
हॉस्पिटल के सामने।
समझ गया, बस तुम दिन और टाइम बता देना बस।
फिलहाल खुदा हाफिज।
फिलहाल खुदा हाफिज।
मेरा इनकार साफ
क्या कर रहे हो?
मेरा जो जी चाहेगा मैं करूंगा, तुम हट जाओ पीछे से। हराम हराम की बातें करते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं।
देखो जरा क्या हाल कर दिया है इसने तुम्हारा। आखिर तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते?
क्या हुआ?
वहां खड़ी मेरा मुंह क्या दिख रही? जाएं जाकर देखें वो कहां गया है। अरे जाएं जाकर पुलिस को इतला दें और नादिर से कहें कि क्रांति साहब के लिए कोई पानी या शरबत वगैरह लेकर आएं, उन्हें दवाई खानी है।
नादिर नहीं है।
निकल जाओ यार, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता यार, निकल जाओ यहां से।
आखिर मेरी जान, तुम भी तो ऐसे काम करते हो कि इंसान तो हैरान ही रह जाता है। आखिर इस किस्म के लोगों से तुम मिलते ही क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है? तुम दिल के मरीज हो, तुम्हारी हालत इस वक्त खराब है।
यार तुम सब्र करो, शोर ना मचाओ, रुको, अभी जाओ यहां से, जाओ।
बहरहाल मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ, कुछ एहतियात से काम लिया करो। इस किस्म के लोगों से अकेले में मिलना ठीक नहीं, हमें भी थोड़ा बाखबर रखा करो।
मैं सही हूँ। नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहां से। ठीक है, जाओ जाओ,
अपना ख्याल रखा करो,
जाओ।
क्या हुआ, परेशान क्यों?
तुम अपने काम से काम रखो यार।
खैर तुम परेशान मत हो, उस बहरोज के बच्चे को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा।
तुम्हें इस मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है।
वो पैसे जो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए भेजा करती थी, वो मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवाता रहा हूँ। बहनोश के नाम से मैंने अकाउंट खोला था बैंक में।
ये क्या है?
और मेरी जान, उन पैसों से मैंने तुम्हारे लिए शिमरान में एक घर खरीदा था, जिसका सबूत तुम्हारे सामने है। बस अब तुमसे सिर्फ दो ही ख्वाहिशें हैं, एक ये कि उस लड़के सरोज से फासले पे रहो, दूसरी ये कि कल अदालत में तुम्हारी पेशी है। मैं चाहता हूं जो सच है वो ही तुम बयान करो।
आप इत्मीनान रखें, मैं ऐसा ही करूंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने क्यों जहमत की, इसकी क्या जरूरत थी?
अरे बेटा जहमत कैसी, ये ले लो।
मामा इनके लिए ये फल तो कम है।
बुरी बात है बेटा,
मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ कि इतने अरसे में मैंने आपको एक फोन भी नहीं किया। अलबत्ता मैंने सरोज से कहा था कि मैं अपनी सी पूरी कोशिश करूँगा कि परवाना भाभी को तलाश कर लूँ।
तुम हमेशा ही काम से आते हो बेटा, तुम्हारा शुक्रिया।
अलबत्ता मेरा एक दोस्त बिजनेसमैन है तुर्की में, मैंने उससे कहा था कि अगर परवाना भाभी या नीमा का कुछ पता चले तो फौरन खबर करे, लेकिन अभी तक मुझे वहां से कोई खबर नहीं आई। तुम किन सोचों में गर्क, तुम्हारा कसूर तो था नहीं। तुम इत्मीनान रखो, अगर परवाना भाभी ईरान में होती तब भी अपनी गलती की वजह से तुम्हारा सामना नहीं करती। मेरा ख्याल है कि हमारे या सरोज को दोबारा जिंदगी की तरफ लौटाने और आलम अरवा से दूर रखने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि हम इसके पैरों में जंजीरें डाल दें।
बस करो यार, तुम भी बस बोलते हो तो बोलते ही चले जाते हो।
वो लड़की, क्या नाम है उसका, बहनोश? हाँ बहनोश शफी, वो भी बुरी नहीं, और इत्तेफाक से दोनों ही आलम अरवा से मुंसलिक भी हैं।
मुसलसल बकवास किए जा रहा है,
बता रहा हूँ कि मुझ में ये सुनने का हौसला नहीं है, लेकिन ये है कि बोले चले जा रहा है, बोले चले जा रहा है।
कहाँ जा रहे हो सरोज? बुरी बात है बेटा।
अच्छा मुझे इजाजत दीजिए।
तुम क्यों खड़े हो गए? बुरा मत मानना बेटा, आजकल इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
अरे नहीं आंटी, अब तो हमें इन सब बातों की आदत सी हो गई है। सरोज जब से कोमे से बाहर आया है सब कुछ ऐसा ही।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
कैसी बातें कर रही हैं आंटी, आपके दुश्मन शर्मिंदा हूँ। बस आप इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें, वो बहुत बदल गया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चलूंगा।
जैसे तुम्हारी मर्जी, जीते रहो। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
जी
जी करामती साहब।
अस्सलाम वालेकुम जी,
कैसी हैं आप?
मैं मिसेस हिकमत के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाह रही थी।
सॉरी, मैंने वादा किया है, मैंने आपके वालिद से वादा किया है कि आपसे आइंदा कभी बात नहीं करूंगा। मैं अब आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।
खुदा हाफिज।
मोहतरमा बहनाज इस्कंदरी की तरफ से वकील।
जी, मैं पहले भी आपका नाम सुन चुका हूँ, फरमाइए।
मैं चाहती थी कि अगर आप इजाजत दें तो मैं मिस बहनाज से कुछ बातें कर सकती हूँ।
ठीक है, कोई हर्ज नहीं, बस जरा जल्दी, कोर्ट का टाइम शुरू होने वाला है।
जी जरूर, शुक्रिया। आपको जिंदा सलामत देखकर निहायत खुशी हुई। आपकी वालदा काफी फिक्रमंद है आज की इस पेशी की वजह से। कल रात जब हमारी बात हुई तो उन्होंने दरख्वास्त की मुझसे कि अदालत जाने से पहले जो बयान देना होगा हम उसके बारे में कुछ बात कर लें।
मैं जानती हूँ मुझे क्या कहना है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
लेकिन मैंने आपकी मेडिकल रिपोर्ट की स्टडी की थी, उसके मुताबिक आपने जो वहाँ बयान दिया है वो सरासर आपके और आपकी माँ के खिलाफ जा रहा है।
बहरहाल मैं झूठ तो नहीं बोल सकती ना अब।
क्या आपके बाबा ने आपके बाहर जाने पर पाबंदी नहीं लगा दी? क्या आप नहीं चाहती कि पाबंदी खत्म हो जाए?
क्यों नहीं।
ठीक है, बेहतर है कि इसमें मैंने जो कुछ लिखा है उसे अच्छी तरह याद कर लें और अदालत में यही बयान दें। और ख्याल रहे, अदालत में बयान देते वक्त जज्बाती मत हो जाइएगा, खुद पर बहुत कंट्रोल रखिएगा। अब आपकी निजात इसी अदालती फैसले से है, ये लीजिए।
परेशान मत हो, आ जाएगा माहिर है।
हाँ आएगा तो, लेकिन उसका जनाजा।
अच्छा तुम अपनी घड़ी की सुई देखो, देखना सेकंड की सुई 60 पर आएगी नहीं, और वो आ जाएगा। गिनना यार,
दिमाग खराब मत करो यार।
आ गया ना।
ये पकड़ो उस्ताद।
सलाम, हीरो बन के आया या जीरो?
हीरो बन के आया उस्ताद, ऐसा छीना उस्ताद के देखता रह गया, उसकी तो जुबान ही बंद हो गई। खैर खोल के देख लो कहीं इसमें भी सेवलॉन वेलॉन ना हो।
ये मुझे दो। अच्छा ठीक है अब तुम जाओ। अच्छा तुम ऐसा करो जाके मुल्क सीखो, मैं आता हूँ।
जा रहा हूँ।
और अपनी जगह से मत हिलना। आप बताओ कैसा रहा?
मान गए यार तुम्हें, अब मजा आएगा। अब खुद को ब्रिज सदफ के शराकत दार समझो।
बंदा तो गुलाम है जितना नवाज है।
बोलो कितना चाहिए?
कोई नाराजगी तो नहीं है ना? अब तो खुश हो ना?
हाँ बहुत खुश हूँ मैं।
सही है।
हाँ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस बहनोई शफी बिनते महमूद शफी, तारीख पैदाइश 1979 तेहरान। आपकी वालदा ने अपनी वकील सलामत साहबा के तवस्सुत से आपके वालिद यानी महमूद शफी के खिलाफ दावा दायर किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि आपके वालिद ने आपके साथ नारवा सलूक, बेजा रोक टोक और आपकी शख्सी आज़ादी को सलब कर रखा है और ये कि उन्होंने आपको अपने भतीजे कामरान शफी के साथ जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया। मेडिकल रिपोर्ट और आपके वालिद के बयान के मुताबिक आपने खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी जो कि नाकाम रही। क्या आप इस बात की तायद करती हैं कि आपने अपने वालिद और सुतेली माँ मिसेस इल्हाम सुबूरी के हाथों मजबूर होकर खुदकुशी जैसा कदम उठाया?
मेरा अपना फैसला था खुदकुशी का, किसी ने भी मुझे इस पर मजबूर नहीं किया था।
मेरी मोकला की बेटी ने बेजा रोक टोक से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, वगरना माय लॉर्ड कोई भी बिना किसी जहनी दबाव के खुदकुशी जैसा अंतहाई कदम नहीं उठा सकता।
मिसेस शफी आप ये बताइए कि आपके मंगेतर कामरान शफी में कोई ऐब या नुक्स था या वो आपके खानदान के हम पल्ला नहीं थे? क्या दलील है आपके पास उन्हें बतौर शोहर कबूल ना करने की या इनकार करने की?
जनाबे आली कामरान शफी में कोई बुराई नहीं है लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ।
लेकिन क्यों?
योर ऑनर, ये वही शख्सी आजादी को सलब करना ही है। कानूनी और शरई एतबार से हर शख्स शरीक हयात के इंतखाब में आजाद है, क्या हमारा कानून यही नहीं कहता है?
आपकी याद दहानी का शुक्रिया। मिसेस शफी मेरा अगला सवाल, क्या आप किसी और को पसंद करती हैं जिससे आप शादी की ख्वाहिशमंद हो? क्या आपकी जिंदगी में कोई और है?
जी नहीं जज साहब।
आप ये जानती हैं कि आप ख्वाह किसी से भी शादी करना चाहें उसके लिए आपके वालिद की रजायत लाजमी है?
हाँ लेकिन मैं शादी ही नहीं करना चाहती हूँ।
जी आपको इख्तियार है कि आप शादी ना करें। शफी साहब आप भी याद रखिए कि शादी के लिए जबरदस्ती करना, खुसूसन ऐसे शख्स के लिए जो शादी के लिए राजी ना हो, मुनासिब नहीं है और अगर बिना रजामंदी के शादी कर दी जाए तो उसमें घर टूटने और तलाक के इम्कान बहुत ज्यादा होते हैं।
बहुत खूब जज साहब, अब जबकि आप फरमा रहे हैं तो मैं भी इसरार नहीं करता कि मेरी बेटी मेरे भतीजे से शादी करे, लेकिन कानून के तहत मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मुल्क से बाहर जाए।
क्या आप मुल्क छोड़ना और बाकी जिंदगी ईरान से बाहर अपनी माँ के साथ गुजारना चाहती हैं?
बिल्कुल।
आपके वालिद की तरफ से दायर करदा दरख्वास्त जो कि शफी खानदान की इज्जत और नामूस पर मबनी है उसके तहत ममनूल खुरूज करार पाई है। शफी खानदान की इज्जत और आबरू के तहफ्फुज़ पर मबनी दरख्वास्त के तहत आप मुल्क से बाहर जाने के मजाज नहीं।
क्या एक बाप को इजाज़त देता है कानून कि बेटी को उसकी माँ से मिलने ना दिया जाए? मेरी मोकला 10 साल से अपनी माँ से नहीं मिली है, अगर इंसानियत के नाते वो अपनी माँ से मिलने के लिए बैरून मुल्क जाना चाहती है तो क्या उसके बाप का ये इकदाम शख्सी आजादी को सलब करना नहीं है?
उनकी वालदा खुद यहाँ क्यों नहीं आई? क्या उन्हें अपने मुल्क में आने पर कोई पाबंदी है?
जी नहीं जनाब।
अगर इनकी वालदा ईरान आ जाए तो आपका एतराज काबिल कबूल है और कोई भी कानून एक माँ को अपने बच्चे से मिलने से नहीं रोक सकता, लेकिन बैरून मुल्क जाने का हुक्म अलग है।
योर ऑनर, कानूनी तौर पर 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़की को बैरून मुल्क जाने के लिए अपने बाप की इजाजत की जरूरत नहीं होती।
जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ बाप को एतराज है। अदालत अगली पेशी तक के लिए बर्खास्त की जाती है। अदालत अगली पेशी में अपना फैसला सुना देगी। वस्सलाम।
शफी साहब, अगर आप बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दें तो हम आपके खिलाफ अपना केस वापस ले सकते हैं। इस तरह ये मसला हल हो सकता है।
जी नहीं, मेरे लिए कोई मसला नहीं। आप चाहें तो मुकदमा जारी रख सकती हैं। जाइए और अपने केस की तैयारी कीजिए।
ठीक है, मैं तुम्हें फोन करती हूँ।
मेरे लिए किसी का फोन तो नहीं आया था?
नहीं सर, किसी का फोन नहीं आया। आपकी तबीयत तो ठीक है?
हाँ, फर्स्ट क्लास। अब इससे बेहतर और क्या होगी, देख तो रही हैं आप।
ये क्या हुआ, किसी से आपका झगड़ा हुआ है क्या? कहीं वही तो नहीं बहरोज?
नहीं, मेरा ब्रीफ केस छीन लिया गया है।
आपने पहचाना नहीं कौन था? पुलिस ने, लोगों ने, क्या किसी ने?
नहीं भाई, मौका ही नहीं मिला, पर भर में आया और ले गया। मेरे कमरे की चाबी दीजिए।
क्या हुआ?
करामती साहब का ब्रीफ केस किसी ने छीन लिया है सर, उसकी वजह से बहुत परेशान है।